क्षेमाय कर्माणि अवताल भेदे मनो न तृप्यते अपि शम्भुताम्ना सुश्लोकमूले चरितामृतानि वीरं विदत्ते भुवोऽसुराणाम् श्लोकमूलेश्चरितामृतानि क्रीडन् विदत्ते द्विजगोऽसुराणाम् क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न प्रीते अपि शृण्वताम् नः श्लोकमूलेश्चतुरितामृतानि अनुवाद पढ़ेंगे इसका। आप द्विजो गायों गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकल्पों के विषय में सुनते हैं किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतः तुष्ट नहीं हो पाते। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विज गावों तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजो अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने दो बार जन्म लिया हो। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है। जो वास्तविक पिता बनता है भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता हैं, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है, किंतु प्रमाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्मा होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। मनुष्य शरीर की पूर्णता प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को समझ सके। किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वे फल शाक अन्न चीनी तथा दूध से युक्त भोज पदार्थों पर जीवन निर्वाह करे। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रियाओं में सहायता करता है। एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वे मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। अतः किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वे बैलों तथा गायों की सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्माएं मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती हैं, अतः वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता से रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। भगवान सब मनुष्यों गायों और देवताओं को जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायित्व होते हैं सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य कुर्म वराह तथा नरसिंह। भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है ताकि बद्ध जीवों को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गोधन जीवन के ऐसे उच्चतर को बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। दुजन्मा सभ्य मनुष्यों गायों तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतः विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकों अनेक पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र हैं। किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र एक घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है, परंतु भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सब मनुष्यों द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पड़े। विद्वानों तथा भक्तों के लिए चिर नवीन है और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों को भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनने से तृप्त नहीं हो पाए थे। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण, तो ये जो अध्याय है इसमें मैत्रेय और विदुर मुनि का संवाद चल रहा है। विदुर मुनि हरिद्वार में जाकर मैत्रेय मुनि से अनेकों अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान के कथाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में। तो इसी प्रकार से हर एक भक्त को उनके जीवन से शैली से सीखना चाहिए कि कृष्ण कथा के लिए कितनी आतुरता रहती है। बहुत सारे लोगों को काफ़ी समय निकल जाने के बाद भी, मतलब मंदिर में जुड़ने के बाद भी, उन्हें काफ़ी सारी कथाएं पता नहीं होती हैं, भगवान के बारे में जानते नहीं होते हैं। भगवत गीता का अध्ययन करना भी नहीं पता होता है। सिर्फ एक भगवत गीता आप सेल्समैन की तरह बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कई बार उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अध्ययन नहीं करेगा तब तक वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन सकता है ना, क्योंकि जब प्रचार करेगा तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर तभी होगा जब उसने अपने जीवन में उसको अपनाया होगा। और अपनाने से पहले उसकी विधि पढ़नी पड़ेगी कि जीवन के लिए क्या मूलभूत सिद्धांत है, तभी व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करेगा। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सभी भक्तों को सिखाया है ना, अपने आचरण से प्रभु जीवे रे सिखाए, जीव को सिखाते हैं आचरण के द्वारा। तो अगर व्यक्ति भगवत गीता खाली डिस्ट्रीब्यूशन करे लेकिन उसका अध्ययन ना करे तो जीवन बेकार है, और खाली पढ़े नहीं उसको अपने जीवन में अपनाए भी कुछ एक अंश। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवत गीता के 700 श्लोकों में से एक श्लोक आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपका जीवन भागवत जीवन के लिए है ना। भगवान से जो भी चीज जुड़ जाती है वो भागवत बन जाती है, भागवत प्रसाद, श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, है ना। तो ये सारी चीजें जो भी भगवान से जुड़ता है वो दिव्य बन जाता है। तो उसके उससे सबसे सबसे मूल रूप सिद्धांत है कि हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि व्यक्ति को दुजन्मा होना चाहिए, एक जन जो कि माता पिता के द्वारा होता है और दूसरा जन जो कि गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। कई लोग मिलते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं, क्या गुरु की आवश्यकता है जीवन में, गुरु होना चाहिए क्या? तो चार प्रकार के गुरुओं का वर्णन आता है। एक है दीक्षा गुरु, जो कि आपको दीक्षा प्रदान करते हैं और एक नया जन्म, एक नया नाम प्रदान करते हैं। और एक है शिक्षा गुरु, जो आपको निरंतर शिक्षाएं प्रदान करते हैं, जिनको जिनके देखने मात्र से, जिनके आचरण से हम सीखते हैं। और एक है पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमको कभी कभी, हम इस कौन में जो पहली बार लेकर आता है व्यक्ति, वो पथ प्रदर्शक गुरु हो सकता है, या फिर जो विभिन्न जगहों पर हम जब फंसे होते हैं तो हमको गाइड करता है, पथ प्रदर्शक गुरु। और एक है चैत्य गुरु, परमात्मा चैत्य गुरु, हाँ, तो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, जो कि हमको अंदर से गाइड करते रहते हैं कि सही है ये गलत है। तो इन चारों प्रकार के गुरुओं की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। और सबसे उत्तम है कि हम शिक्षा दीक्षा गुरु से शिक्षाएं प्राप्त करें या दीक्षा गुरु की परंपरा से शिक्षाएं प्राप्त करें। तो उसमें बताते हैं, चैतन्य चिंतामृत में एक श्लोक आता है, पयार में लिखा है, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल हटे पाए कृष्णेर चरण। जिस व्यक्ति ने कृष्ण को भजने के लिए गुरु की सेवा करी है, गुरु सेवन, माया जाल हटे पाए कृष्णेर चरण, उसके जीवन से माया जाल हटेगा। अन्यथा व्यक्ति अगर दीक्षा भी ग्रहण कर ले और गुरु के मार्गदर्शन में ना चले तो उसके जीवन में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो जीवन, या फिर जिस व्यक्ति ने दीक्षा ना भी ले हो लेकिन अगर वो गुरु के बताए रास्ते पर, जैसे श्रील प्रभुपाद सबके प्रथम शिक्षा गुरु हैं जो भी इस्कॉन ज्वाइन करता है, तो उनके बताए रास्ते पर जो व्यक्ति चलेगा, जैसे कम से कम 16 मालाओं का जप नियम पूर्वक ध्यान पूर्वक करना चाहिए कोई व्यक्ति करता है, और चार पाप नियम जो कि बताए गए उनका पालन करता है, तो उसका जीवन निश्चित ही सफल हो जाता है ना। तो जैसे लोग बोलते हैं कि शास्त्र भी है, कृष्ण भी है, फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? शास्त्र भी है, कृष्ण भी है, फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? व्हाई डू वी रिक्वायर गुरु? तो बताते हैं, जिस प्रकार से मेडिकल बुक्स भी अवेलेबल है, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, आप गूगल पे जाकर सर्च करें तो बड़ी बड़ी कार्डियक हार्ट सर्जरी आप गूगल से देख के कर सकते हैं, है ना। तो सर्जरी भी अवेलेबल है, मेडिसिन भी अवेलेबल है, पर ट्रीटमेंट हो सकता है अपने आप? क्या जरूरत है? डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर आपको बताएगा कि कौन सी मेडिसिन कितने निर्धारित समय पर कितनी बार लेनी है, ये गुरु बता सकते हैं। और हर एक व्यक्ति के अलग 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 तरीके से प्रभुपाद जी ने सिखाया है, तो इसलिए एक ही जो माने मतलब एक ही दवाई है वो सारी चीजों पर कारगर नहीं होती है। किसी को बुखार है, किसी को दर्द है, किसी को डायरिया है, तो अलग अलग दवाई देनी पड़ती है। टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, समय काल परिस्थिति के अनुसार गुरु प्रदान करते हैं, हर एक व्यक्ति को अलग अलग दवाई प्रदान करते हैं। तो इसलिए जब तक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो हम मनोधारणा, मेंटल स्पेकुलेशन से अपना जीवन जिएंगे, और इसलिए कभी भी प्रश्न उठे जो कि हम डेविएट हो रहे हैं, तो गुरु, अगर समय मिले तो गुरु, नहीं तो गुरु से, प्रमाणिक शिक्षक गुरु से हम प्रश्न पूछें कि हमें क्या करना चाहिए इस ऐसे वक्त पर, तभी वो व्यक्ति दुजन्मा सभ्य व्यक्ति कहलाएगा, वरना अनकल्चर्ड रहेगा पूरा जीवन, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं, है ना। और प्रभुपाद जी के प्रीचिंग करने का अलग अलग तरीका था। एक बार प्रभुपाद जी ने एक भक्त को बुलाया और बोले, क्या आप मेरे लिए शास्त्रों का क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं? तो प्रभु तो बोले, प्रभु जी है ग्रीक प्रभु, तो बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ ट्रांसलेशन, क्योंकि मैं इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या ट्रांसलेशन करना है? तो प्रभुपाद जी ने कुछ पन्ने दिए, 3-4 पन्ने, और कहा कि इनका ट्रांसलेशन करके ले आओ। तो चले गए और ट्रांसलेशन करके लेके आए इंग्लिश में। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। तो बोले कि प्रभुपाद, और कोई सेवा हो तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं तो इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, तो आपके लिए सेवाओं के लिए तत्पर रहूँ हमेशा। तो प्रभुपाद जी उनको अंदर कमरे में ले गए, बोले बहुत सारी सेवाएं आओ। हर एक कमरा में से एक ट्रंक रखा था बहुत बड़ा, उसमें अनेकों शास्त्र और ग्रंथ रखे थे, सारे सारे शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम और अनेकों आचार्यों के द्वारा लिखी गई टिप्पणियां, और उन्होंने खोलकर वो ट्रंक दिखाया और उसमें अनेकों शास्त्र थे। तो हैग्रीव प्रभु देखकर घबरा गए और बोले कि प्रभुपाद इतना सारा, इसको ट्रांसलेट करने में तो पूरा जीवन लग जाएगा। तो प्रभुपाद बोले एक जीवन नहीं, कई जीवन लग जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है अलग अलग शिष्यों को अलग अलग निर्देशन दे रहे हैं। एक जगह प्रभुपाद निर्देश दे रहे हैं, जब वृंदावन का मंदिर निर्माण हो रहा है तो एक भक्त आकर प्रभुपाद से बोलते हैं कि प्रभुपाद मेरे को तो सारा दिन जप करने का समय नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि मैं तो इस टेंपल की कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट ईंटें यही सब गिनता रहता हूँ, तो किस प्रकार से मैं ध्यान पूर्वक जप करूँ, कब समय निकालूँ? तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपका ये ईंटें गिनना, आपका ये सीमेंट, यही सबसे बड़ी भागवत सेवा है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कृष्ण के घर का निर्माण कर रहे हैं, बाकी अन्य लोग क्या करते हैं, अपने घर का निर्माण करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण के घर का निर्माण करता है वो सर्वोत्तम सेवा है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग निर्देश प्रभुपाद जी ने दिए हैं। एक बार एक भक्त है, उनको प्रभुपाद जी का सूटकेस बहुत पसंद था। प्रभुपाद जी के पास एक व्हाइट कलर का सूटकेस था, छोटा था, है ना, तो बहुत सुंदर लगता था। तो भक्त क्या कि एक बड़ा सा सूटकेस ले आए, है ना, व्हाइट कलर का, और बोले शायद प्रभुपाद जी को अब छोटा पड़ता होगा, इसमें सामान काम आता है। तो एक बड़ा सूटकेस ले आया और बोले प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ये आपके लिए बड़ा सूटकेस। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए लेके आए। प्रभुपाद ने क्या किया, छोटा वाला सूटकेस उस बड़े वाले में रखा और बंद कर लिया। तो भक्त बोल सोचने लगा कि अरे मैं तो इसलिए लाया था कि प्रभुपाद जी का गिफ्ट मिल जाएगा मुझको, प्रसाद मिल जाएगा, क्योंकि गुरु द्वारा जो भी यूज की वस्तु है, तदीय वस्तु, वो सारे के सारे क्या है, निर्माल्य है, प्रसाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है, भक्तों के द्वारा रखी जाती है संभाल के। तो वो सोचे कि मिल जाएगा छोटा सूटकेस, लेकिन वो बड़े सूटकेस में रख के प्रभुपाद जी और फिर टहलने लगे पूरे कमरे में। तो भक्त बड़ा हैरान हो गया, बोला कि क्या करूं? तो प्रभुपाद जी बोले क्या हुआ, तुम इतने ध्यान पूर्वक देख रहे हो, क्या चाहिए तुमको? तो बोला कुछ नहीं प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले आई नो यू नीड समथिंग, क्या चाहिए तुमको, जल्दी बोलो। तो बोले नहीं, चुपचाप एकदम घबराते गए कि अरे मेरे तो मैं क्या बोलूं अभी। प्रभुपाद बोले तुमको क्या मेरा छोटा वाला सूटकेस चाहिए? तो भक्त बोला जी प्रभुपाद, तो पहले क्यों नहीं बोला? तो बोले प्रभुपाद बस मैं तो सेवा में सोचा आप अपने आप दे देंगे। प्रभुपाद बोले मैं जानता था, क्योंकि गुरु हर एक व्यक्ति के हृदय को जानता है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम अपने आप कहते हो या मेरे कहने की प्रतीक्षा करते हो, है ना। तो प्रभुपाद बोले ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है कि मन में कुछ और है लेकिन गुरु से खुलकर बात नहीं करते हैं, है ना। तो इस प्रकार का छल व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो गुरु जानते होते हैं कौन सा व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या 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 कर रहा है अपने जीवन में, है ना। तो हमारे जीवन में हम दृढ़वत होकर भक्ति तभी कर पाएंगे जब हम गुरु की शरण ध्यानपूर्वक ग्रहण करेंगे। ध्यानपूर्वक ग्रहण करने का मतलब है गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना, एज इट इज। कहते हैं भगवत गीता में, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां द्वंद मोहं निर्मुक्तं भजते मां दृढ़वतां। भगवान का भजन वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पापों का अंत हो गया है और जिसके पुण्य कर्म का क्या हो गया, प्राकट हो गया है, है ना। और इसके बाद में क्या है, द्वंद मोहम निर्मोक्ता भजते मां दृढ़वता। तो बहुत सारे भक्त बोलते हैं हम दृढ़वत होकर भक्ति नहीं कर पाते हैं, है ना, हम इधर उधर डेविएट हो जाते हैं, बार बार मन नहीं लगता है भक्ति में, भजन में मन इधर उधर भागता है। तो भक्ति रूपी बीज को प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, पापम येषां तु अंतगतं पापम, पापों का तो अंत हो गया है, और पुनानाम जन्म कर्म नाम, और पुण्य का प्रकट हो गया है, लेकिन द्वंद मोहम निर्मुक्तम, द्वंद और मोह से हम क्या है, मुक्त नहीं हुए, इसके कारण हम दृढ़वत होकर भक्ति नहीं कर पाते। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौर मिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो जब व्यक्ति द्वंद और मोह से निर्मुक्त होगा, मुक्त हो जाएगा, जेलेसी है ना, द्वंद और मोह अटैचमेंट, इससे मुक्त होगा, तभी व्यक्ति क्या कर सकता है, ध्यान पूर्वक जप कर पाएगा। तो गुरु के शरण ग्रहण करने के बाद भी क्या होता है, कई बार व्यक्ति द्वंद और मोह में फंस जाता है ना, द्वेष भावना, जेलेसी, वो कैसे इतना आगे बढ़ सकता है, मैं पीछे कैसे रख सकता हूँ, या फिर भक्ति करने के बाद भी अटैचमेंट, मोह, उसको अपने घर परिवार अपनी संपत्ति से अटैचमेंट होता है, अरे सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दूंगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा, लेकिन कृष्ण जगह जगह पर कहते हैं भगवद गीता में, योग क्षेम वहां में हम, मैं तुम्हारे योग क्षेम का क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे द्वारा तुम्हारी इच्छा है वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, जो तुम्हारी जरूरत है और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, चाहे आपकी भक्ति हो चाहे आपका धन हो, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, निर्भर नहीं हो पाता भगवान के ऊपर, डरता है पता नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा। इसी प्रकार से गुरु की शरण ध्यान पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए, है ना। और भागवतम में एक जगह लिखा है 10वें स्कंद में, ना अहम इज्जा प्रजतिभास्य तपो अक्षम वा तुष्येम सर्वभूतात्मा गुरु सुशिष्य यथा। जो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं कि मैं कृष्ण किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता हूँ, ना ही तपस्या से। हो सकता है कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठकर ध्यान पूर्वक तपस्या करता हो, बहुत अच्छा जप करता हो, है ना, ब्राह्मण कुल जन्म नाम, या फिर वो बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो उसने, है ना, इंद्रियाम निग्रह, या फिर इंद्रियों का उसने क्या किया हो, निग्रह किया हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो, है ना, से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि मैं गुरु की सेवा से प्रसन्न होता। तो कोई व्यक्ति अपनी साधना या अपना ब्राह्मण कुल में जन्म होना बहुत अहंकारी हो कि अरे हम तो बचपन से ब्राह्मण हैं, या फिर अपनी इंद्रियों पे सेंसेस पे हमने बहुत कंट्रोल किया है, इन सब चीजों से अहंकार उत्पन्न होता है, तो वो व्यक्ति भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं कि बहुत बड़ा तपस्वी है, हिमालय की चोटी पे बिना वस्त्र पहने तपस्या कर रहा है, ना उससे प्रसन्न होते हैं जो कि व्यक्ति इंद्रियों को अपने कंट्रोल किया है, इससे भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है। और गुरु की सेवा करने का मतलब क्या है, गुरु के बताए हुए उपदेशों का सही रूप से पालन करना, है ना। लेकिन भक्त कर नहीं पाते हैं, जैसे गुरु बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करो भगवान के नामों का, और क्या करो, क्या प्रजल्पा मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, ग्राम में कथाएं मत करो, क्या करो, सदा कृष्ण कथा करो, कृष्ण कथा सुनने और कृष्ण कथा कहने के लिए ललायत रहो, है ना। इधर उधर की बात करनी होती है तो लोग क्या है ना, ठंड में भी इधर चले जाते हैं, अभी क्रिसमस फेस्टिवल आ रहा है और उसके बाद न्यू ईयर आएगा, तो भाग क्या करते हैं लोग, भाग ठंड के मौसम में हिमालय पर चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे, लेकिन भजन करना हो तो मंदिर तक भी नहीं आ पाते, है ना। मंदिर तक आने के लिए रजाई छूटती नहीं है, उसका सबसे बड़ा मोह है ना, द्वंद्व मोह, तो मोह में एक रजाई का मोह भी है, घर का मोह भी है, तो वो छूटता नहीं है व्यक्ति से, वो मोह छूट जाएगा तब व्यक्ति दृढ़ होकर भजन कर सकता है, है ना। बोलने की आदत होती है, द्वेष की आदत है, द्वंद्व मोह में फंसा हुआ है व्यक्ति। एक बार ऐसी कथा आती है कि एक कछुआ था, वो एक पॉन्ड में तालाब में रहता था, और वहां पर बहुत सारी मछलियां भी थी, वो मछलियों को साथ में वो रहता था, तो क्या हुआ, धीरे 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 उस गांव में, जब जिस गांव में कछुआ रहता था वहां पर क्या हुआ, अकाल पड़ गया, पानी का, जल का अकाल, तो सारे के सारे गांव वासियों ने क्या किया, उसी तालाब से धीरे धीरे जल लेना शुरू कर दिया। अभी सारी मछलियां सोचने लग गई क्या करें, कछुआ भी सोचने लगा, लेकिन कछुए का एक दोस्त, दो दोस्त थे, कौन, दो सारस, है ना, जो उड़ सकते हैं, और वो आया करते थे मछलियां खाने, लेकिन कछुआ क्योंकि उससे, कछुए को तो खा नहीं सकते थे, उससे दोस्ती थी तो बातचीत करते थे, और कछुआ कभी कभी उनको मछलियां पकड़ाने में हेल्प करता था, क्योंकि वो उसी एरिया का था ना, वो हेल्प कर देता था, 3-4 मछलियां पकड़ के मुंह पे क्या फास्ट फेंक देता था, तो सारस खा लेते थे वो। तो जब सारस उसे खाते थे, तो एक दिन जब पता चला कि भाई ये तालाब तो सूख रहा है और मछलियां तड़प रही हैं धीरे धीरे, तो कछुए ने सोचा मैं क्या करूं, मैं भी मर जाऊंगा बिन जल के। तो सारस बोले चिंता मत करो, इस गांव से दूर 7 गांव छोड़कर एक जो है ना क्या पड़ता है, एक तालाब है, और वो जंगल के बीचों बीच है, वहां आसपास कोई भी आबादी नहीं है, तो मैं क्या करेंगे, हम तुमको ले जाएंगे यहाँ से उड़ाकर और वहां जाकर तालाब में छोड़ देंगे, और उस तालाब में तुम आराम से जल पीना, मछलियां खाना, वहां रहना आराम से। तो कछुआ बोला ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं उड़ूंगा कैसे, मेरे पंख थोड़ी है, तुम लोग उड़ सकते हो। तो बोले चिंता मत करो, हम एक डंडा ले लेंगे, उस डंडे के इधर मैं पकड़ लूंगा, दूसरा पकड़ लेगा, बीच में तुम पकड़ लेना, और फिर क्या है, तालाब से दूसरे तालाब जाएंगे, 7 गांव तो पार करने हैं। तो कह रहा है कि ठीक है, तो उसने सारी मछलियों को बताया कि भैया मैं तो बच जाऊंगा, मेरे तो दोस्त बन गए, तो वो मुझे उड़ा कर ले जाएंगे। तो फिर कछुए ने बीच में से पकड़ लिया, दोनों ने इधर से पकड़ लिया, बीच में डंडा था, अभी उन्होंने फ्लाई करना शुरू किया। फ्लाई करने से पहले उन्होंने आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, उपदेश दिया, क्या कि देखो जब हम उड़ेंगे तो तुम बस एक कार्य मत करना, क्या मत करना, बोलना मत, बोलना मत, उन्होंने कहा कि ठीक है। अभी वो उड़ना शुरू किए, उड़ रहे हैं, तो पहला गांव जैसे ही निकला तो बच्चे जो थे ना वो फुटबॉल खेलते हैं सुबह ग्राउंड में, तो चिल्लाने लगे, ओ देखो देखो कछुआ भी उड़ने लगा, आजकल तो कछुआ भी उड़ने लगा। तो कछुए को गुस्सा आया, कछुए बोला देखो कैसे बोल रहे हैं मेरे को, है मतलब मैं उड़ सकता हूँ, तुम लोग नहीं उड़ सकते, मेरे दोस्त हैं क्योंकि उड़ने वाले, इसलिए मैं उड़ सकता हूँ। तो उसने पकड़ के रखा, गुस्सा आ रहा था, बोलना चाह रहा था, लेकिन हंस ने इशारा किया, हाँ उन्होंने सारस ने इशारा किया, बोलना नहीं, तो चुप रहा। फिर दूसरा गाँव निकला, दूसरा गाँव, तीसरा गाँव पार हो रहा था धीरे धीरे, तो फिर और लोग चिल्लाने लगे, सारे बच्चे, ओ देखो 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 क्या हो रहा है, कछुआ देखो, कछुआ चला सारस बनने, कछुआ चला उड़ने, कछुआ क्रिटिसाइज करने लगे, बहुत सारा कछुआ क्रिटिसाइज किए, इतना करे कि कछुए से रहा नहीं गया, बोला अब तो पानी ना क्या है ना, पानी ऊपर भर गया, गले तक भर गया है, अभी तो कुछ कहना पड़ेगा। तो वो बोलने लगा, तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा समझते हो, क्या समझते हो अपने आप को, बस मेरे मेरे ऊपर मेरी तरक्की से जलते हो, ये करके जैसे बोला मैं ठाम नीचा के गिर पड़ा। सारस बेचारे क्या करते हैं, रोने लगे, बोले कि क्या कह रहे दोस्त, तेरे को बहुत हमने समझाया लेकिन तू समझा नहीं। तो इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं कि जो ये तालाब है, जो ये सूख रहा है, वो तालाब है, ये भौतिक जगत है, इसमें अनेकों मछलियां हैं जो कि क्या है, मरने को तैयार है लेकिन जाने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ समझदार कछुए है ना, जो भक्त होते हैं, वो किसके द्वारा, दो सारस, एक कृष्ण और एक गुरु, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर अगर चलते हैं तो ऐसे गांव में चले जाएंगे, ऐसे ऐसे तालाब में चले जाएंगे जहां से क्या होगा, वापस नहीं आना पड़ेगा। कौन सा तालाब है वो, गोलोक धाम वृंदावन है ना, ऐसे गांव में, ऐसे तालाब में चले जाएंगे जहां आसपास कोई आबादी नहीं है, वहां गाना नहीं पड़ेगा संसार दावा लीलो का, वहां पर तो आनंद संसार है ना, क्योंकि भगवान का पूरा शरीर आनंद से बना हुआ है। जैसे मिश्री से अगर कोई बनाया जाए ना, दीपावली के ऊपर भेंट लगाते हैं, बताशे, खिलौने, देखा है आपने, हाथी के रूप में होते हैं, चीनी के खिलौने बनाते हैं, अगर उसको तोड़े तो क्या निकलेगा, चीनी निकलेगी, मिश्री निकलेगी, मीठा निकलेगा। उसी प्रकार कृष्ण जो है वो पूरे के पूरे आनंद के बने हुए हैं, उनकी एक बूंद भी आनंद है, पूरी एक बोले एक मग भी आनंद है, पूरा शरीर भी आनंद है, तो आनंद ही आनंद है भगवान में, है ना। इसीलिए कहते हैं कृष्ण जब जन्म लेते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के ये नहीं कहते हैं कृष्ण भयो, है ना, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम से भी पहले क्या चीज है, वो सच्चित आनंद के विग्रह है, ऐसा विग्रह जिसके अंदर आनंद परिपूर्ण अवस्था में भरा हुआ है, है ना। तो भगवान का संग प्राप्त करें तो हमें आनंद ही मिलेगा। तो भगवान का संग प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है, और जो बीच में ये डंडा जिसे सारस ने पकड़ रखा है, ये महामंत्र का डंडा है ना, और इसको क्या बोला कि बस इसको पकड़ के रखो और क्या मत करो, बोलना मत। तो बोलने का मतलब ये है कि ग्राम कथाएं मत बोलना, इधर उधर की बातें मत बोलना, क्या बोलना, जब भी बोलना कृष्ण कथा बोलना, जब भी बोलना भगवान की बातें बोलना, उससे क्या होगा, तुम इस तालाब से उस तालाब तक चले जाओगे। लेकिन भक्त लोगों के साथ में ज्यादातर ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करते हैं वो, बोलते हैं प्रभु जी पहले मैं इस लेवल पर था लेकिन अभी मैं फिर इस पे आ गया हूँ। बहुत सारे अन्य भक्त इस प्रकार से बोलते हैं, बीच में तो मैं 32 माला करने लगा था लेकिन अब फिर से मैं 16 कर रहा हूँ, या फिर 16 करने लगा था अब मैं 8 करता हूँ, पहले मैं रोज भागवतम का अध्ययन और श्रवण करता था अब मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों, किस कारण से ये डिविएशन होता है, किस कारण से हम रह जाते हैं, गिर जाते हैं? इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हम अपने मन को कृष्ण के नाम के अलावा अलग ही चीजों में लगाने को तैयार है। सिर्फ कृष्ण नाम को पकड़ के रखें और कृष्ण कथा के अलावा कुछ ना बोले तो गारंटी है वो दो सारस जो कृष्ण है और गुरु है वो आपको इस तालाब से ले जाकर उस तालाब में रख देंगे ना। आप देखिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 1922 में वो अपने गुरु श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले और 1933 में जाकर उनका क्या हुआ, दीक्षा, ऑफिशियल दीक्षा उनको मिला है ना, प्रमाणिक दीक्षा मिली। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं 1922 में जब पहली बार अपने गुरु से मिला तभी से मैं उनको अपना प्रमाणिक गुरु स्वीकार कर लिया था, दीक्षा हो चुकी थी। तो दीक्षा का अर्थ वही बताया गया है क्या, कि व्यक्ति अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस, आदेशों को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में पालन करे, है ना। और इसमें इस श्लोक के अंदर बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार ये जो सृष्टि है इसके अंदर एक दूसरी चीज अपने आप से जुड़ी हुई है। आप देखें यहाँ पर श्लोक में बता रहे हैं कि कोई भी सभ्य मनुष्य अगर गाय और बैलों के ऊपर निर्भर रहे तो उसका जीवन जो है ना आनंद भरा जीवन होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटीज को डेवलप किया, हर जगह खेती करो, गाय रखो और आपका जीवन आनंद पूर्ण रहेगा। तो अभी तो हर आदमी गाय नहीं रख सकता क्योंकि चलने के लिए कार चाहिए होती है, बोले कि इधर से उधर जाना प्रीचिंग करने के लिए, प्रोजी गाय पे कैसे जाएंगे, बैल पे कैसे जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, एक प्रोग्राम रखा जाएगा सुबह 9 बजे का तो पहुंचेंगे शाम को। तो इसलिए बेटर है कि हम उन चीजों का इस्तेमाल करें लेकिन साथ के साथ गाय और बैलों की रक्षा करने के भी कोई योजना बनानी चाहिए भक्तों को, है ना। और आप देखें कि काफी सारे सेंटर्स हैं, जैसे द्वारका हमारे मंदिर जो है उसके पास में एक गौशाला है जहाँ पर उसको हरे कृष्ण गौशाला कहते हैं, वहाँ पर 1700 cows है, 1700 गाय है ना, और वहीं से मंदिर का सारा दूध आता है। अभी तो संत नगर मंदिर में भी वहीं से दूध आने लगा है। और उस व्यक्ति के हम क्या करते हैं प्रीचिंग करते हैं उस एरिया में नजफगढ़ सुरेड़ा चावला, तो वहाँ पर हम बोलते हैं प्रीचिंग करते हैं कि गाय भी हम रक्षा करते हैं, तो जो लोग दान देते हैं गाय का वो उस गौशाला में देते हैं और वो हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, काऊ मिल्क, और उसी से सारा प्रसाद बनता है, पेड़े स्वीट्स, तो सारा डिफरेंट होता है, सब लोग कहते हैं बहुत सुंदर है। तो ये गायों की रक्षा, और कुछ भक्तों ने वहाँ पर प्रण लिया है कि अब हम गायों की रक्षा करेंगे, तो उन्होंने 2 गाय रखी हैं अपने घर के अंदर लाके, और अब वो उन्होंने सोचा है कि अपना जीवन में सब कुछ त्याग कर सिर्फ गाय की रक्षा करेंगे और उसकी नंबर ऑफ काउज इंक्रीज करेंगे, काफी संख्या में गायों को बढ़ाएंगे। तो देखिए हमारी कम्युनिटी जो हमारी सोसाइटी जो सोशल पृथ्वी है, ये प्लैनेट है अर्थ, इसके ऊपर भगवान ने बहुत सुंदर संरक्षण करी है। जीवो जीवस्य जीवनम्, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, लेकिन ये देखना पड़ेगा किसके लिए भगवान ने क्या चीज बनाई, क्या वस्तु बनाई है, है ना। जिस प्रकार से सर्प के लिए चूहा बनाया है ना, मयूर के लिए सर्प बनाया है, मनुष्य के लिए क्या बनाया है, सब्जी बनाई है, फल शाक बनाया है, लेकिन मनुष्य क्या करता है कि वो फल शाक को त्याग कर वो चीजें खाने लग जाता है जो कि दूसरे जीव के लिए बनाई गई है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की संरचना में फर्क है ना, मनुष्य को बनाया गया है वेजिटेरियन फूड खाने के लिए, साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि मनुष्य का जो शरीर है उससे सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खाया जा सकता है। आप देखें जो शेर है उसको बनाया गया है कच्चा मांस खाने के लिए, है ना, और जो मनुष्य है उसको बनाया गया है सब्जी खाने के लिए, क्योंकि दोनों के दांतों में फर्क है, उसके दांत पहने होते हैं शेर के और हमारे दांत क्या होते हैं फ्लैट होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन है ना आते हैं वो छोटी होती है और मनुष्य की 6 गुना लंबी होती है। तो फिर अगर इसमें मांसाहार का सेवन किया जाए तो काफी समय तक ये पेट में पड़ा रहेगा और क्या करेगा, अनेकों अनेक बीमारियों को जन्म देगा। इसीलिए नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स जो है हृदय रोग वो सबसे ज्यादा है अमेरिका में, क्यों, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाया जाता है, 90% पब्लिक नॉन वेजिटेरियन फूड ईटर है, उसके कारण क्या होता है वहां पर सबसे ज्यादा हृदय रोग है, 80% लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है। तो आप देखिए किस कारण से है, क्योंकि मनुष्य को बनाया गया है शाक सब्जी खाने के लिए। तो भक्त बनने के साथ साथ काफी सारी चीजों में फायदा होता है। सबसे पहला फायदा तो है कि हमारा हमारी आत्मा शुद्ध होती है, भगवान का आनंद प्राप्त होता है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है भक्त अगर वो सिर्फ शाक सेवन का क्या करता है शाक का सेवन करता है। ये चीजें समझनी चाहिए। लेकिन एक बार पूछा गया था कि पूरी संरचना में सब इस पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा जहरीला चीज क्या बनाई भगवान ने, बता सकते हैं क्या है सबसे जहरीली, क्या है सबसे जहरीला, इसको व्हाट इज मोस्ट पॉइजनस इन दिस क्रिएशन, इज मोस्ट पॉइजनस सबसे जहरीली वस्तु क्या बनाई भगवान ने, मनुष्य, हरी बोल, सबसे ज्यादा पॉइजनस मनुष्य को बनाया है। इतना पॉइजन है कि बार 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 वो वस्तु खाने के लिए तत्पर है जो अपने लिए बनी नहीं है, है ना, और वो कर्म करने को तैयार है। मान लीजिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक जगह पर अगर गेहूं की एक बोरी पड़ी हो और चिड़िया आएगी तो कितना खाएगी, जितना उसकी चोंच में आएगा, एक बंदर आएगा तो कितना खाएगा, जितना उसकी मुट्ठी में आएगा, मनुष्य आएगा तो कितना लेगा, पूरी बोरी उठा के ले जाएगा, खाएगा कुछ नहीं, कल के लिए संभाल के रखेगा, है ना। तो ये आ सकते हैं, इस प्रकार का जहरीला मनुष्य है ना, सांप के काटते हैं अगर मनुष्य को तो फिर भी बच सकता है, लेकिन मनुष्य काटे सांप को चाकू से काट देते चाइना में, बचेगा क्या? वो पीस पीस करके बेचते हैं, सेल आउट करते हैं। सांप तो बेचारा सिर्फ डंकी मार सकता है, वो क्या करे, उसमें भी एंटी वेनम इंजेक्शन लगा के बच जाते हैं, लेकिन उसको काट दिया वो क्या, उसके तो पूरा परिवार होता होगा कि भैया ले गए और काट दिया चाकू से इन्होंने। तो पॉइजन ऐसा है व्यक्ति सबसे ज्यादा। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा गया, मेनका गांधी जो है जो इस टाइम एनवायरमेंटलिस्ट थी उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि आप लोग तो सिर्फ क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन आप लोग जो है ना एनवायरमेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं, है ना, इस संरक्षण जो सृष्टि है इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वी आर वर्किंग ऑन इंटरनल इकोलॉजी, है ना, हम किस पे कार्य करते हैं, इंटरनल इकोलॉजी, अंदरूनी जो संरचना है ना बनाई गई है इस पर कार्य करते हैं, जिससे क्या होगा, वी कैन प्रिजर्व द एक्सटर्नल इकोलॉजी, जिसके कारण एक्सटर्नल इकोलॉजी जो है वो बैलेंस होगी, प्रिजर्व हो सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब व्यक्ति भक्त बन जाएगा तो फिर वो नॉन वेज ईटर नहीं रहेगा, मांसाहार का सेवन नहीं करेगा, चीटी तक को वो बचाकर चलेगा, किसी पशु की हत्या नहीं करेगा, तो इस तरह से एक्सटर्नल इकोलॉजी ठीक होगी। खाली बोलने से कि पशुओं की रक्षा करो पशुओं की रक्षा करो, सबसे ज्यादा फिर वही लोग पशुओं का नाश करते हैं। तो इस तरह से क्या है, इंटरनल इकोलॉजी चेंज करने से एक्सटर्नल इकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इंटरनल इकोलॉजी चेंज करने का सबसे सरल रास्ता क्या है, साधुओं का संग करना, है ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, सारे के सारे शास्त्र कहते हैं कि साधु का संग सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में। श्रवण करें कृष्ण कथा का, साधुओं के संग में आकर ये ना करें कि और आज क्या खाया आपने, है बोले जी साधु संग करते हैं, हम तो सारा दिन साधुओं के साथ ही रहते हैं, सुबह से शाम बस अपने खाने पीने की बातें होती है, लेकिन कृष्ण के बारे में रंज बात पे चर्चा नहीं होती है। जो कृष्ण चर्चा हो वो ऐसी साधु संग, है ना। तो साधु संग सर्व शास्त्र पे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, सारी की सारी सिद्धि प्राप्त होती है अगर लव मात्र, है ना, बताया है इतना सा छोटे सा सेकंड से भी कम अगर किसी साधु का सच्चा संग मिल जाए, पता नहीं कौन सा एक शब्द किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। एक घंटे का जो प्रवचन होता है उसमें एक घंटे में सारा प्रवचन लोग सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें निद्रा भी आती है, थके हुए भी होते हैं, सुबह को उठे हुए भी होते हैं, लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में जब हमारी आंख खुलती है और उस कान में अगर कोई एक शब्द भी प्रवेश कर गया तो हो सकता है हमारा जीवन बदल जाए। इसलिए क्लास में आए लेकिन सोए, लेकिन फिर भी आए जरूर, क्योंकि बोलते हैं कि पता नहीं कब आपका नेत्र खुले और वो एक शब्द आपका जीवन बदल दे, है ना। तो इसलिए क्लास में आना बहुत आवश्यक होता है। और ये साधु संग इतना इम्पोर्टेंट है कि एक बार एक राजा था, और वो राजा क्या किए, शिकार खेलने के लिए दक्षिण दिशा में गए। जब दक्षिण दिशा में जा रहे थे तो उनकी जो सेना थी और जो घोड़े थे उससे उतरकर वो नीचे चल रहे थे पैदल पैदल चिड़ियों को देखते हुए। तो इतने में क्या हुआ, पथ भ्रमित हो गए, सारे के सारे सैनिक और घोड़े इधर निकल गए पूर्व दिशा में और वो दक्षिण दिशा में चलते रहे। जब पीछे देखा तो देखा सेना नहीं है, तो अभी बेचारे बड़े अकेले पड़ गए, क्या करूं, खाली धनुष बाण था और पैदल थे। तो इतने में क्या हुआ, एक तोता था वहां पर, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे राजा आ गया, माला माल राजा है, लूट लो पकड़ लो। तो है ना राजा घबरा गए, कहां से आवाज आ रही है, इधर उधर देखा, धनुष बाण तीन चार तीर चलाया करके, लेकिन क्या कर सकता था, पकड़ा गया, वहां से सारे के सारे लुटेरे आ गए, उसको पकड़ लिया, सारे मोतियों की माला निकाल ली, सारे जेवरात निकाल लिए, कपड़े भी उतार लिए, बोले ये लो पत्ते वाले कपड़े पहन लो जो हम पहनते हैं, और वो पहनाकर उनको भेज दिए। बेचारा राजा बहुत दुखी हुआ, बोले हम तुम्हें मार नहीं रहे हैं लुटेरे, बोले क्यों, क्योंकि तुम राजा हो, इतना तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, इस सम्मान है, सारा कुछ उतार लिया और पत्ते पहना के भेज दिए, सम्मान है, अरे तुम्हारा तुम्हारी जान नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा सम्मान है, जाओ यहाँ से और कभी मत आना इस रास्ते में, आओ तो फिर जेवरात पहन के आना तुम्हारा से। तो उसको भेज दिया वहां से। अभी वो राजा चला गया, जब चला गया तो उसको बहुत दुख हुआ कि एक पक्षी तोता, जो कि इतना सुंदर पक्षी मानते थे, उस तोते के कारण, उस सुख के कारण मैं क्या किया, आज लूटा गया हूँ और अपने राज्य में लूटा गया हूँ। तो बहुत उसको गुलामी हुई और फिर वो वापस अपने राज्य में चले आए और सोचा कि अब मैं कभी दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो कम से कम घोड़े से नीचे नहीं उतरूंगा, है ना। तो इसके बाद उन्होंने निर्णय कर लिया, और कुछ समय बीतने के बाद 7-8 साल बाद फिर वो पूर्व दिशा में एक बार शिकार खेलने गए, और फिर वही किए, घोड़े से उतर गए और पक्षियों को देखने लगा, उन्हें पक्षियों से प्रेम था, और इतने में क्या हुआ, फिर से सारे घोड़े और वो दूसरे रास्ते में चले गए, बेचारे फिर अकेले रह गए। अब अकेले रह गए तो इस बार बहुत घबरा गए, बोले इस बार मुझे ध्यान पूर्वक सुख का ध्यान रखना पड़ेगा, तोते का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई तोता क्या करे मेरे को ना लुटवा दे। तो तीर लेके बस तोता ही तोता देख रहे थे, इतने में एक तोता दिखाई दिया, हो बोले बस यही लुटेरे हैं। जैसे ही इन्होंने एम किया अपना मारने के लिए, तोता बोले लगा हरे कृष्णा कहिए प्रसाद पाइए, लगता है राजा आप थके हुए हैं, कुछ प्रसाद ग्रहण कर। तो राजा सोचने लगा मारने से पहले, क्या ये सच में तोता है, ये तोते की प्रजाति तो मैं समझता था खराब होती है लेकिन ये तो अच्छा है, कैसे हो गया ये। तो फिर जब राजा को अंदर ले गए, वहां देखा भक्त लोग बैठे थे, कीर्तन चल रहा था और प्रसाद अरेंज था। थोड़ी देर बाद कीर्तन समाप्त होते ही फिर प्रसाद लिया, राजा को भी दिया गया, राजा प्रसन्न हो गया। राजा बोला देखो कितना फर्क है एक तोते में, एक वो तोता था जिसने दक्षिण दिशा में मुझे लुटवा दिया और एक ये तोता है जिसने पूर्व दिशा में मुझे प्रसाद दिलवाया। तो तोता बोला राजा घबराइए नहीं, मैं वही तोता हूँ। तो राजा बोला अरे घबराने वाली बात तो अब है, तुमने कोई ये कोई चाल तो नहीं है कि भक्तों की ड्रेस पहना के सारे लुटेरे बिठा दिए हैं, पहले प्रसाद खिलाया ताकि मैं भाग ना जाऊं तीर ना चलाऊं। तो नहीं 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 अभी मेरा जीवन बदल गया है। कैसे जीवन बदल गया? तो उन्होंने बोला जब दक्षिण दिशा में हमने आपको लूटा उसके कुछ दिनों बाद वहां से कुछ भक्त कीर्तन करते हुए जा रहे थे, जैसे हमारे होता है ना हरि नाम संकीर्तन चल रहा था, क्या चल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ जब इतना सुंदर कीर्तन चल रहा था तो भक्त लोगों का प्राय आदत होती है कि जो रथ पर होते हैं उसमें से उठा उठा के प्रसाद फेंकते हैं, फ्रूट्स फेंकते हैं, लो प्रसाद लो प्रसाद लो। तो एक अमरूद मेरी तरफ भी आकर गिरा और मैं क्योंकि अमरूद का प्रेमी था तो मैं उस फल को खाने लगा और खाने के बाद तुरंत मैं उनके रथ के ऊपर बैठ गया और भी फल खाने की आशा में। और फिर धीरे धीरे वो रथ चलता रहा और मैं दक्षिण दिशा से इस पूर्व दिशा की ओर चला आया। उन्होंने कहा अच्छा, फिर बोले फिर उसके बाद खाने के लिए वहां पर तो मुझे मांसाहार का सेवन नहीं होता था लेकिन झूठा प्रसाद मिलता था उन लोगों का और वो मैं खाता था, लेकिन यहाँ मुझे भक्तों का झूठा प्रसाद मिलता था वो मैं खाता था और भगवान का फ्रूट्स मिलते थे प्रसाद में महाप्रसाद खाता था और वहां पर लोग गालियां देते थे गंदी गंदी भाषा में बातें करते थे लेकिन यहाँ पर भक्त क्या है सदा सदा कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा का सेवन करते हैं, कृष्ण कथा का पान करते हैं। इसके कारण मेरा पूरा जीवन बदल गया, पहले मैं गंदी भाषा में बात करता था और अभी मैं कैसे बात करता हूँ, प्रेम पूर्वक भाषा में बात करता हूँ, है ना। तो ये इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है साधुओं का संग करने से। तो अगर हम देखें तो हम भी वही तोते थे जो कि गंदी भाषा में बात करते थे लेकिन आज कुछ वर्षों बाद भगवान के भक्तों का सर्वश्रेष्ठ भक्तों का संग करने के कारण, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का श्रवण अध्ययन करने के कारण क्या हो रहा है, हम भी उस शुभ की तरह धीरे धीरे बदल रहे हैं। भले अंदर से नहीं बदले लेकिन बाहर से तो बदल ही रहे हैं, है ना। क्योंकि अंदर से बदलने के लिए हमको ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, है ना। और बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान के शास्त्र भगवान की तरह सदा नवीन रहते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है कि भक्तों के लिए वे चिर नवीन है, हमेशा नए रहते हैं शास्त्र। कितनी बार भी भगवत गीता को पढ़ो लेकिन जब दोबारा पढ़ोगे आप तो आपको क्या लगेगा, अरे तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, है कि हमेशा लगता है। भागवतम को आप पढ़ो और उसके बाद दोबारा तो दो तीन दिन पहले जो पढ़ा उसे आज फिर पढ़ो लगता है अरे इस पहले तो मैं समझा ही नहीं था, इतना सुंदर इसके अंदर लिखा हुआ है। रस है, सागर है जिसमें से कितने भी मग पानी निकालो लेकिन वो सागर का पानी कभी खत्म नहीं होता है और हमेशा नया नवीन आनंद प्रदान करता है। जिस प्रकार से भगवान के लिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आगम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वेदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। भगवान इस प्रकार के हैं जो कि क्या है, नव यौवन रहते हैं, है ना, सबसे पुराने हैं लेकिन उसके बाद भी सबसे यंग हैं, हमारे से तो ज्यादा यंग हैं। हमारे 25 30 35 40 साल निकलने पर मुरझा जाता है ना, लेकिन भगवान सालों साल विग्रह रूप में खड़े रहते हैं लेकिन कभी मुरझाते नहीं। भगवान नव यौवन भगवान यौवन है। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान हमेशा नवीन रहते हैं भगवान के शास्त्र भी क्या है, नवीन रहते हैं। और ऐसे शास्त्रों को सुनने के प्रति हमारी क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, है ना। तो बोलते हैं वासुदेवम कथा रुचि, वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न करने से क्या होगा, जीवन में हमारे क्या होगा, अंदर से क्या होगा, शुद्धि हो जाएगी, है ना। अभी कुछ कुछ दिन पहले इस ओलिंगस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए थे मंदिर में, तो एक प्रवचन में सुन रहे थे, वो बोलते हैं कि हमारे अंदर हम चाहे कितना भी भजन करें लेकिन अंदर कलमश रहता है। तो उन्होंने कहा कैसे, प्रमाण क्या है? बोले आपने कभी एक्सरे करवाया? बोले हाँ। किस रंग का आता है? बोले काले रंग का। बोले इससे प्रमाण है कि हमारे अंदर कलमश भरा हुआ है ना, क्योंकि एक्सरे भी काले रंग का आ रहा है ना। अभी इतना कलमश है, कितना भी भक्ति करे लेकिन अंदर कलमश समाप्त नहीं होता। ये समाप्त तभी होगा जब कृष्ण रूपी जो भगवान का ज्ञान है वो हमारे कानों के द्वारा हृदय के अंदर प्रवेश करेगा। इस प्रकार से बारिशों के दिनों में क्या होता है कि जो सांप होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। लोगों को लगता है बारिश के मौसम में बड़े सांप मेंढक निकलते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जिन छेदों के अंदर सांप रहते हैं, सर्प रहते हैं, वही भर जाता है। तो भी वो कहाँ रहेंगे? उनके घर में पानी भर गया है ना। जैसे कश्मीर में अभी पीछे पानी भर गया तो लोग छत पर आ गए थे। तो इसी प्रकार से सर्प के अगर बिल में पानी भर जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो तुरंत ऊपर आ जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो ये सर्प है, क्या है हमारे हृदय में? काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीजें है ना, मोह, मद, मत्सर, जलन की भावना है ना, और द्वेष की भावना, और क्या है, मोह अटैचमेंट है हमको, काम वासना, इतनी सारी चीजें हमारे हृदय में है। ये जो सर्प है छह प्रकार के, ये कैसे बाहर आएंगे? जब ये कानों में है ना, इनके अंदर छेदों के अंदर क्या जाएगा? जल। क्या, कौन सा जल जाएगा? कृष्ण कथा का जल जाएगा। जब वो जल जाएगा तो इतना पानी भर दो, इतना पानी भर दो कि वो बाहर ही निकल जाए, हमारे हृदय से रहे ना हमारे हृदय के अंदर। तो उसके लिए रेगुलर सुनना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पानी डालेंगे ना तो मिट्टी ड्राई हो जाती है ना। तुलसी में भी थोड़ा सा डालते हैं या पौधों में डालते हैं, दो तीन दिन नहीं डालो तो ड्राई हो जाता है। ऐसे ही है, एक दिन डाला बड़ा अच्छा लगेगा, गीला गीला है, सॉफ्ट हो गया, थोड़े दो तीन दिन नहीं कथा सुनेंगे तो फिर ड्राई हो जाएगा दोबारा से, है ना। बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त हो गया। अभी बीज तो प्राप्त हो गया लेकिन क्या है, भगवान के चरणों तक लता बनने के लिए उसको समय लगेगा। तो कैसे लता बनेगी वो? उस बीज को ध्यान पूर्वक रोज की रोज क्या करना पड़ेगा? कभी बीज लगाए तो क्या जरूरत है उसमें? जल की जरूरत है जिससे वो बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं श्रवण कीर्तन करे जल सिंचन, जल से सिंचन करें, श्रवण कीर्तन करके भगवान के नामों का जप करें और भगवान की कथाओं का श्रवण करें। उससे क्या होगा, वो बीज धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा और बड़ा होने के साथ साथ फिर हमको उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा, है ना। ये देखना पड़ेगा कि कोई भी हमारे इस जो छोटा सा पौधा है इसको तोड़ ना दे, है ना। तो उसके लिए बताते हैं फेंसिंग करनी पड़ेगी। फेंसिंग का मतलब है ऑफेंस, है ना। जो बोलते हैं ना सुबह नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, इन ऑफेंसेस से बचना पड़ेगा। ऑफेंस का मतलब है ऑफ डिफेंस, है ना। फेंस के उस पार जो भी है वो चीजें हमें इसके अंदर ना आ पाए, ऑफेंस ना करें हम, है ना, अपराध ना करें नाम के प्रति, है ना। उन 10 नाम अपराधों को ध्यान पूर्वक रोज पढ़े और पढ़ने के साथ साथ खाली पढ़े ही ना, उसको धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, है ना। वरना क्या होगा, कोई भी जानवर आ जाएगा उस पौधे को 2 मिनट में नष्ट कर सकता है। और फिर जब वो धीरे धीरे पौधा बढ़ना शुरू होता है तो साथ के साथ क्या होता है, खलपतवार, छोटे छोटे ऐसे पौधे आते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं, अनावश्यक अनवांटेड वीड्स आ जाएंगे। तो फिर उनको कैसे निकालेंगे? उनको तुरंत ही जैसे दिखाई दे वैसे ही निकाल फेंकना चाहिए। हमें पता होता है क्योंकि चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमें पता होता है अरे ये काम नहीं करना चाहिए भक्ति में आने के बाद, अरे ये नहीं करना चाहिए। फिर भी व्यक्ति क्या करता है, इग्नोर कर देता है और फिर उस अनवांटेड चीजों को, वो खलपतवार को बढ़ने देगा तो खलपतवार तो बड़ी हो जाएगी लेकिन जो आपका ओरिजिनल पौधा है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस पौधे को, इस बीज को लता बनाने तक जितना भी परिश्रम करना है वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्या क्या? श्रवण कीर्तन से जल सिंचन और अपराधों से रक्षा, और फिर क्या करना है, अनवांटेड वीड्स जो खरपतवार है उनको तुरंत देखते ही निकाल फेंकना है। और जो मिट्टी है वो मिट्टी कौन सी है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, उस विनम्रता को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, है ना। अगर विनम्रता नहीं है, बोलते हैं ग्रीक में ह्यूमिलिटी मतलब ह्यूमस, ह्यूमस शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा में बोला जाता है और उससे आता है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता नहीं है तो वो कितना भी बड़ा भक्त बन जाए, बहुत ज्ञानी बन जाए ना, भागवतम याद कर ले, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है, सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, लोगों के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं है,
तो उसकी वो क्या है ना, बीज कभी भी क्या होगा, बड़ा नहीं होगा। क्यों, क्या हो जाएगा, वो मिट्टी ड्राई हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, उसका हृदय शुष्क हो जाएगा। वो सिर्फ अपने से मतलब रखेगा, मुझे धाम जाना है, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होगा, जो व्यक्ति प्रेमी होगा हृदय से, वो हर एक एक आत्मा को क्या चाहेगा, भगवत धाम ले जाना चाहेगा। तो उसके लिए चाहे उसका जीवन कितना भी दुष्कर हो जाए, जिस प्रकार से दिया होता है, खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, वैसे एक भक्त रात दिन मेहनत करता है, रात दिन सेवा करता है और अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख पाता। क्यों, ताकि सारे के सारे अनेकों लोगों को क्या हो, भगवत धाम प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान पूर्वक इस सारी चीजों को अपनाएंगे तो क्या होगा, एक दिन ये बीज क्या बन जाएगा, लता, प्रेम लता बन जाएगा। और जाकर कहाँ बंध जाएगी ये लता, ये लता होती है ना बेल, उसको एक पॉइंट नीचे होता है और एक पॉइंट ऊपर बांधना पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कृष्ण चरण है ना, और उसके ऊपर धीरे धीरे अंत समय में अंत नारायण स्मृति। आप जब अपना शरीर छोड़ेंगे तो आपको बहुत सारा प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, क्योंकि वो उस लता के द्वारा आप सीधे कृष्ण चरणों में क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर हो कृष्ण चरणों में, तो इन सारी चीजों को ग्रहण करें, अपने जीवन में गुरु को ग्रहण करें, गुरु के आदेशों को ग्रहण करें और क्या करें, ध्यान पूर्वक अपने नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, राधा गोविंद देव जी की जय, पद्म पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर हरि प्रेम आनंदे हरे हरे।